जयं विष्णुपाद परमहंस परिब्राजकचार्योदरक्षि श्रीमद इस डिवाइन ग्रेशियस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस कॉन्वेंट संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जयं विष्णुपाद परमहंस परिब्राजकाचार्योदरक्षि श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ताय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनितिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय दो देवताओं के द्वारा स्तुति गर्भस्तुति श्लोक क्रमांक 19 सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खोले यथा सती सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खोले यथा सती सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती
सरस्वती ज्ञान खले यथा सती
माताजीस देवकी दैट देवकी सर्व जगन निवास ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड द सस्टेनर ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस मत्स्थानि सर्वभूतानि निवास भूता द वूम्ब ऑफ देवकी हैज नाउ बिकम द रेसिडेंस नितराम extensively na not reje became illuminated bhojendra gehe within the limits of the house of kamsa agnishikha eva like the flames of a fire ruddha covered saraswati knowledge gyanakhale in a person known as Gyanakhala, one who possesses knowledge but cannot distribute it. Yatha, or just as, Sati, so being. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Devaki then kept within herself the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes, the foundation of the entire cosmos. But because she was under the arrest in the house of Kamsa, she was like the flames of a fire covered by the walls of a pot, or like a person who has knowledge but cannot distribute it to the world for the benefit of human society. Purport. In this verse, the word Gyanakhala is most significant. Knowledge is meant for distribution. Although there is already much scientific knowledge, whenever scientists or philosophers awaken to a particular type of knowledge, they try to distribute it throughout the world, for otherwise the knowledge gradually dries up and no one benefits from it. India has knowledge of Bhagavad Gita, but unfortunately, for some reason or another, this sublime knowledge of the science of God was not distributed throughout the world, although it is meant for all of human society. Therefore, Krishna himself appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu and ordered all Indians to take up the cause of distributing the knowledge of Bhagavad Gita throughout the entire world. Jare dekha tare kaho Krishna upadesh Amaragya Guru Huya Tarai Desh. Instruct everyone to follow the orders of Lord Krishna as they are given in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. In this way, become a spiritual master and try to liberate everyone in this land. Although India has the sublime knowledge of Bhagavad Gita, Indians have not done their proper duty of distributing it. Now, therefore, the Krishna consciousness movement has been set up to distribute this knowledge as it is, without distortion. Although previously there were attempts to distribute the knowledge of Bhagavad Gita, these attempts involved distortion and compromise with mundane knowledge. But now the Krishna consciousness movement, without mundane compromises, is distributing Bhagavad Gita as it is, and people are deriving the benefit of awakening to Krishna consciousness and becoming devotees of Lord Krishna. Therefore, the proper distribution of knowledge has begun, by which not only will the whole world benefit, but India's glory will be magnified in human society. Kamsa tried to arrest Krishna consciousness within his house, Bhojendra Gehe, with the result that Kamsa, with all his opulences, was later vanquished. Similarly, the real knowledge of Bhagavad Gita was being choked by unscrupulous Indian leaders, the result that India's culture and knowledge of the Supreme was being lost. Now, however, because Krishna consciousness is spreading, the proper use of Bhagavad Gita is being attempted. Jai Srila Prabhupada ki. To agami कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य पर आज हम प्रथम कृष्ण कथा दशम स्कंद से आरंभ कर रहे हैं और आज से लेकर जन्माष्टमी तक प्रतिदिन प्रातःकालीन की कथा में दशम स्कंद से भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन होगा। तो दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में स्थित हैं। विवाह के दिन वसुदेव और देवकी रथ पर आरूढ़ होकर कंस के द्वारा चालित अपने निवास स्थान राजमहल जा रहे थे। अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कंस को चेतावनी दी कि तुम देवकी के प्रति इतना प्रेम जता रहे हो, इतने मूर्ख हो। आकाशवाणी में सबसे पहला शब्द जो प्रकट हुआ वो था रे मूर्ख, अर्थात सबसे पहले कंस को गाली दी, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपने ही धुन में चलता रहता है तो थोड़ा फटकारना पड़ता है। तब कंस सुनने लगा ध्यानपूर्वक। आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस महिला के प्रति तुम इतना प्रेम व्यक्त कर रहे, जानता नहीं कि उसका ही आठवां पुत्र तुम्हारे वध का कारण बनेगा। तब कंस एक क्षण में अपने प्रेम को वैमनस्य में प्रकट करने लगे। बाएं हाथ से देवकी के केश को धारण किए, दाएं हाथ में नंगी चमकती हुई तलवार अपने हाथ में लिए और उस तलवार को अपने सर के ऊपर लेकर अगले ही क्षण उस तलवार को नीचे लाकर देवकी का वध करने के लिए तैयार थे। जब 10,000 गजराजों के बल वाले कंस की बलिष्ठ भुजाओं में चमकती हुई नंगी तलवार हो और कंस के हृदय में वध करने का संकल्प दृढ़ हो और जिसका वध वो करना चाहते हैं वो उसके चंगुल में हो, तो प्रश्न उठता है कि देवकी का उस समय कंस के आक्रमण से बचने की क्या आशा थी। तो कोई सामान्य व्यक्ति कहेगा कि देवकी का बचना असंभव था, क्योंकि परिस्थितियां इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसी परिस्थितियों में देवकी और वसुदेव के विपरीत परिस्थितियों में उनका बचना असंभव था। तो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम इसलिए मनाते हैं जिससे भागवत के दशम स्कंद में दी गए कई शिक्षाप्रद बातों को हम अपने जीवन में उतार सकें और हम अपने जीवन में सोचने की, विचार करने की, निर्णय लेने की दिशा बदल सकें। भौतिक स्तर पर सामान्य व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, और जब हम निराश और हतोत्साहित हो जाते हैं निर्णय लेने की क्षमता नष्ट हो जाती है। तो भौतिकवादी व्यक्ति के सर के ऊपर अगर कंस की लटकती तलवार होती तो उसका शरीर तो बाद में कटता, पहले उसकी आशा कट जाती है। तो भागवत वर्णन करता है कि चाहे शरीर कट जाए लेकिन अपने हृदय के भीतर आशा और संकल्प को कभी कटने मत देना। और इसलिए उस क्षण जब वसुदेव ने ये दृश्य देखा कि कंस के हाथ में वो नंगी लटकती तलवार है, अगर वसुदेव अपने आप को कर्ता मानते तो हतोत्साहित होकर बैठ जाते, सोचते कि मुझसे तो ये होने वाला नहीं, मेरे वश के परे है, हार मान जाओ। तो इसलिए आशा जय, निराशा पराजय इत्यादि के विविध प्रकार की परिभाषाएं भागवत में दी गई हैं। तो उस समय वसुदेव के पास चयन करने के लिए केवल एक क्षण था, क्योंकि अगले ही क्षण वो तलवार नीचे आने वाली थी। लेकिन उस क्षण में वसुदेव जी ने विचार किया कि परिस्थितियों के ऊपर वश करना मेरे सामर्थ्य से परे है, लेकिन प्रयास करना और दृढ़ संकल्प करते हुए निर्णय लेना ये मेरे वश में है। तो इसलिए विपरीत परिस्थितियों के बीच, लगभग असंभव वाले परिस्थिति के बीच वसुदेव जी ने संकल्प किया कि भले कंस की तलवार नीचे आकर देवकी के सर को धड़ से अलग कर दे, भले उसका वध हो जाए, लेकिन उससे पूर्व मेरा कर्तव्य है केवल बैठ के तमाशा नहीं देखना। भले एक क्षण मेरे लिए उपलब्ध हो, लेकिन एक क्षण में भी वैष्णवों की सेवा की जा सकती है। देवकी वैष्णव है, उसके ऊपर आक्रमण अत्याचार हुआ है, उसके जान पर आई है, या तो मैं इस विपरीत परिस्थिति को देखकर साहस खोकर पराजय स्वीकार करके अपनी आशा को काट डालूं, या फिर उस क्षण में उस लटकती हुई तलवार का विरोध करने का एक तुच्छ प्रयास करूं। तो जन्माष्टमी का आरंभ होता है इस संदेश से कि चाहे आपको क्षण मात्र मिले सेवा करने का, उस क्षण को आप तुच्छ मत स्वीकार करो। उस एक क्षण में बहुत कुछ हो सकता है। अगर सेवा करने के लिए आपको कुछ धन प्राप्त हो, ये मत सोचो इससे क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपके पास सेवा करने के लिए कुछ आयु शेष बची रहे, ये मत सोचो अब ऐसे डगमगाते हुए स्वास्थ्य के बीच हम क्या सेवा करेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। अमी वृद्ध जरा तोर लिखिते का पय कर, मन किच्छु स्मरणे न होए, न देखिए नयने न सुनिए श्रवणे, तब लिखी ए बड़ विस्मय। कविराज गोस्वामी 90 वर्ष की आयु में कहते हैं कि मैं कितना वृद्ध हो गया, नेत्रों से देख नहीं पा रहा, हाथ मेरे कांप रहे हैं, स्मरण शक्ति क्षीण हो चुकी, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ समय शेष है। चाहे आयु कितनी भी ऊंची क्यों न हो, लेकिन शरीर कितना भी स्वास्थ्य से नष्ट क्यों न हो, लेकिन इच्छा, संकल्प और आशा, ये तीन जरा से परे हैं, काल से परे हैं, विपरीत परिस्थितियों से परे हैं, और इन सभी को सशक्त बना के चलना ये सत्संग में श्रवण कार्य करता है। तो हम लोग सत्संग में आकर श्रवण क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने हृदय के इस आशा संकल्प शक्ति को पोषण करें, जिससे कि हर प्रकार के विपरीत परिस्थितियों में हम आशा करते रहें। इसलिए वसुदेव जी ने उस क्षण में देखा कि केवल इस परिस्थिति के भयावह विपरीत भावों को देखकर मैं हथियार नीचे डाल दूं, लेकिन वसुदेव ने कहा मेरे हाथ में हथियार नहीं, मेरे भुजाओं में कोई हथियार नहीं, समय बिल्कुल क्षीण है, लेकिन हम सभी के पास भगवान ने सबसे बड़ा हथियार दिया है, विवेक शक्ति और बुद्धि। और इसलिए वसुदेव जी ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और सोचा कि भले एक सेकंड क्यों न हो, और वो कंस को समझाने का प्रयास करने लगे और पूरा भागवत का ज्ञान वो उनको सुनाने लगे, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, पूरा कंस को भागवतम क्लास सुनाया। सबसे खतरनाक क्लास था वो, क्योंकि एक भी पॉइंट गलत बोले तो पत्नी का वध हो जाता है, और वो प्रिपेयर्ड क्लास नहीं था, ऐसा सोच के नहीं आए थे कि कल इस तरह होगा। तो इसलिए जीवन के भयावह परिस्थितियों में हम किस तरह अपने विवेक शक्ति को सतर्क रखें और उसे भगवान और वैष्णवों की सेवा में समर्पित करें। और ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर प्रथम संदेश है कि चाहे आपके पास सामर्थ्य, सत्ता, धन, संपत्ति, समय, ऊर्जा, स्वास्थ्य कितना ही कम क्यों न हो, लेकिन भगवान की भक्ति और कृष्ण को आकर्षण करने के लिए ये सब भौतिक तत्व इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आपके मन का संकल्प। इसलिए भक्ति को कहा गया है अन्याभिलाषिता शून्यम। हम अपनी इच्छा शक्ति को भगवान की सेवा में प्रकट करते हैं। तो वसुदेव जी देवकी के बचाव में कंस को कहने लगे, ये महिला है, आपकी बहन है, तुम इतने बड़े क्षत्रिय राजा हो, आपके कुल में आज तक कभी किसी ने किसी निरअपराधी महिला जो कि हथियारों से विहीन है आक्रमण कभी किया है क्या? कंस भी सोचने लगा। तो वसुदेव जी ने सबसे पहले क्या किया, कंस को कंफ्यूज कर दिया। तो प्रचार का सबसे पहला स्टेप है कंफ्यूज करो। श्रद्धा का सबसे पहला पग क्या है, संशय। जो भौतिकवादी व्यक्ति अपने इंद्र तृप्ति में पूरी तरह आत्मविश्वास के साथ इंद्र तृप्ति कर रहा है उसके मन में शंका की बीज डालो कि आप जो इंद्र तृप्ति कर रहे हो इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। तो वो भी सोचने लगेगा, ये क्या बोल रहे हो, ये कैसे संभव है। मैं बहुत वर्ष पूर्व फ्लाइट पे जा रहा था लंदन में, जब कर रहा था तो पीछे से एक वयोवृद्ध महिला आई और बोलने लगी, स्वामी जी थोड़ा धीरे बोलो, धीरे बोलो, भगवान को सुन लेगा, इतना जोर से चिल्लाओ मत। तो मैं धीरे धीरे जप करने लगा। तब तक वो लोग वहाँ पर फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट था, तो दारू वारू बांटने लगे। तो एक व्यक्ति पहली बार फ्लाइट पे चला था तो दारू जब बांट रहे थे तो उसने एयर होस्टेस को पूछा, ये दारू का कितना है? तो उसने कहा फ्री। तो ये फ्री शब्द सुन के वो इतना आवेश में आ गया कि घटाघट पीते रहा, जैसे नींबू शरबत हो, इतना पी गया कि वो कंट्रोल के बाहर चला गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। और मैं भी सोचने लगा, यार इंटरनेशनल फ्लाइट है, एसटी बस है। तो उसके पश्चात जब वो चिल्लाने लगा, सब उसको वशीभूत करने लगे, ये महिला पीछे से आती है मेरे पास और कहती है, महाराज जी अपने मंत्र से उसको वश में करो। तो मैंने कहा, भैया ये मंत्र अपने आप को वश में करने के लिए है, दूसरों को नहीं। तो इसलिए वसुदेव जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार कंस को नियंत्रित करने का प्रयास किया और कई कुछ उन्होंने सिद्धांत पोषक शब्द कहे और फिर उसको कहा कि देखो आठवें पुत्र से आपको प्रॉब्लम है, अब पहले सात ने क्या गलती की। तो कंस भी सोच में पड़ गए। अब कंस ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, वसुदेव जी की वाणी में मुझे श्रद्धा है, वसुदेव जी के चरित्र पर मुझे श्रद्धा है, छोड़ दिया और कहा कि जब आठवां पुत्र पैदा होगा उसको लेके आना। तो वसुदेव जी प्रथम पुत्र को भी उनके पास लेके आए। प्रथम पुत्र का नाम था कीर्तिमान। और जब कंस को लाके दिया, कंस ने उस पुत्र को देखकर कंस के हृदय में भी करुणा की भावना आ गई और उसने कहा, नहीं नहीं बहुत ही प्यारा है, लेके जाओ। तो वसुदेव जी अपने पुत्र को वापस लेके चले गए। नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। नारद मुनि कंस को एक कमल पुष्प देते हैं और कंस कहते हैं कि ये कमल पुष्प क्यों दे रहे हो हमको? तो नारद मुनि कहते हैं, कंस बताओ इस कमल पुष्प में पहली पंखुड़ी कौन सी है और आठवीं पंखुड़ी कौन सी है? तो कम से गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले ये आठवां है, ये पहला है। नारद मुनि ने उसको घुमाया वापस, वो कमल पुष्प को घुमा के बोला, अब बताओ पहला कौन सा है, आठवां कौन सा है। तो कंस भ्रमित हो गया, तो कहने लगे कहना क्या चाहते हो। नारद मुनि ने कहा, अरे भैया एक आकाशवाणी हुई जिसने कहा कि आठवां पुत्र मृत्यु का कारण बनेगा, आपको जानकारी है क्या कि आकाशवाणी किसने की? इतनी श्रद्धा कि आठवां पुत्र ही मृत्यु का कारण बनेगा, बाय चांस पहला हो तो क्या करोगे, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या आपके पास? कंस ने कहा, ये तो सही कह रहे हो। नारद मुनि कहने लगे, आजकल तो अपने आसपास के लोगों के ऊपर भी भरोसा करना कठिन है, आप आकाशवाणी के ऊपर इतनी श्रद्धा रख के उस बच्चे को लौटा दिए। कंस का मन बदल गया, फिर उस पुत्र को बुलवाया और वसुदेव और देवकी के आंखों के सामने ही उस बच्चे को उठाकर नीचे एक बहुत बड़े पथरीले चट्टान पर दे मारकर उसको समाप्त किया और चारों तरफ उस नन्हे से अबोध शिशु के रक्त फव्वारे की तरह फैले और वो वसुदेव और देवकी अपने नेत्रों के समक्ष इस बीभत्स घटना को देख रहे थे। तो सोचिए देवकी और वसुदेव के हृदय में कितना दर्द और कितना शोक उत्पन्न हुआ होगा। अब जब किसी के हृदय में दर्द और शोक उत्पन्न होता है, जब हमारे प्रस्तावित योजना नष्ट हो जाती है, तब फिर क्या होता है, वो केवल हमारे योजनाओं को नष्ट नहीं करते, हमारी आशा उत्साह संकल्प इच्छा को भी नष्ट कर देते हैं। वसुदेव और देवकी हतोत्साहित होकर वहां बैठकर बिलक बिलक के रोते हुए और अपने अश्रु धारा के बहते हुए वेगवती सरिता के प्रवाह में अपनी आशाओं को डुबा सकते थे, लेकिन इतना शोक करते हुए भी वसुदेव और देवकी ने कहा, पुत्र समाप्त हो गया लेकिन हम अपनी आशा को समाप्त होने नहीं देंगे। ये जन्माष्टमी का संदेश है। भगवान कहते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद महाराज के घर में आनंद की खुशियां मनाई गई, उत्सव मनाया गया, लेकिन उस नंदोत्सव से पूर्व माता और पिता वसुदेव और देवकी के आंखों से कितना लीटर आंसू निकला, इसका किसी के पास हिसाब नहीं है। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि उन लोगों ने इस दर्द को सहन करते हुए एक ही विचार किया, वर्तमान में चाहे कितना भी कष्ट दर्द क्यों न हो, हम इसको सहन करेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्य में कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिलेगा, कृष्ण के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिका गृहात। तो वर्णन आ रहा है, ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित। तो वसुदेव जी और देवकी कंस के कारागृह में बंद थे, हाथ में हथकड़ियां, पैर में जंजीर और श्रृंखलाएं, पूरी तरह परतंत्र कंस के वशीभूत, चारों तरफ निराशा का घनघोर अंधकार तम छाया हुआ, परिस्थितियों के अंधकार में हृदय में आशा की किरण चमक रही थी। ऐसे विपरीत परिस्थितियों के सागर के बीच जब कोई आशा के टापू पे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, तब कृष्ण ऐसे भक्त के हृदय में जन्म लेते हैं। यह जन्माष्टमी का मूल तत्व है और इसलिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कंस ने वसुदेव और देवकी के छह पुत्रों की निर्मम रूप से हत्या की, और ये छह पुत्र, छह रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के प्रतीक हैं। और तब जाकर सातवां पुत्र बलराम जी उनके गर्भ में प्रकट हुए और बलराम जी को स्थानांतरित किया योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में, और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में प्रकट होकर देवकी के मन से देवकी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। तो इसलिए यहां पर वर्णन आता है, सबिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि। प्रभुपाद जी कहते हैं जब एक भक्त के मन से दूसरे जीव के मन में कृष्ण स्थानांतरित हो, जैसे वसुदेव के मन से कृष्ण देवकी के मन में स्थानांतरित हुए, इस प्रक्रिया को दीक्षा कहते हैं। दीक्षा अर्थात हम अपने मन में भगवान श्री कृष्ण के इस स्मरण को, चिंतन को दूसरे किसी भक्त के हृदय में प्रविष्ट कराएं। तो श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद जी का घर था कोलकाता में, सीताकांत बैनर्जी लेन में, और प्रभुपाद जी के घर के फर्स्ट फ्लोर पर गौड़िया मठ के ब्रह्मचारियों का संस्कृत का क्लास होता था, हरिनाम अमृत व्याकरण का। प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, पांच बच्चे थे, उनका बिजनेस डगमगाता रहता था, एक पुत्र उनका लगभग पागल सा हो गया था और कलकत्ता के गली गली में घूमकर कचरा उठाकर खाता था। तो प्रभुपाद जी के गृहस्थ की परिस्थिति इतनी अनुकूल नहीं थी, पत्नी विरोध करती थी और कई बार प्रभुपाद जी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच जो सीढ़ी थी उसमें बैठकर जप किया करते थे। एक दिन प्रभुपाद जी जप कर रहे थे तो गौड़िया मठ के ब्रह्मचारियों को हरिनामामृत व्याकरण की शिक्षा देने वाले वहां पे आचार्य, उनका नाम था डोल गोविंद शास्त्री, वहां पर आए, प्रभुपाद जी के बगल में बैठकर कहने लगे, स्वामी अपने उस अभय बाबू, प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, कि अभी अभी मैंने पृथ्वी त्याचे जत नगरादि ग्राम के ऊपर कथा किया, लेकिन सोच रहा हूं कि महाप्रभु ने तो कह दिया कि पूरे विश्व में नाम का प्रचार होगा, लेकिन पता नहीं कोई ये कर पाएगा कि नहीं, कौन करेगा। प्रभुपाद जी जब करते करते उठे, दो कदम नीचे उतरे, डोल गोविंद शास्त्री को देखकर संकेत करके कहा, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी भविष्यवाणी की यह अवश्य सार्थक होगा। फिर दो कदम नीचे उतरे, फिर मुड़े, फिर डोल गोविंद शास्त्री को देखकर बोले, भविष्य में सरस्वती ठाकुर के चरण कमलों में समर्पित कोई मूर्ख भक्त इसको सिद्ध करेगा। फिर प्रभुपाद जी नीचे उतरे, तब तक डोल गोविंद शास्त्री सोचने लगे, वो व्यक्ति कहीं मैं तो नहीं, क्योंकि वो भी सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे। फिर प्रभुपाद जी दो कदम नीचे उतरकर फिर डोल गोविंद शास्त्री को देखकर बोले, वो व्यक्ति आप नहीं होंगे। तो डोल गोविंद शास्त्री को लगा, रहे अभय बाबू को क्या लगता है वो करेंगे क्या, ये कैसे संभव है उनके लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के लिए हर प्रकार की परिस्थितियां विपरीत थीं, फिर भी प्रभुपाद के मन में क्या था, आशा, और उस आशा के बलबूते पर, उस संकल्प को हृदय में धारण करके प्रभुपाद जी अमेरिका गए। और कहा गया है कि प्रभुपाद जी जब जलदूत में प्रवेश कर रहे थे बॉस्टन, अभी बॉस्टन के अंदर प्रवेश नहीं किए थे, जस्ट थोड़े दूर पर थे, अंदर से बॉस्टन से एक और शिप बाहर निकला और शिप के कप्तानों का आपस में एक इस तरह का सेटिंग रहता है कि एक शिप दूसरे को पास करे तो कैप्टन उसके डेक पे खड़े होकर दूसरे कैप्टन को संकेत करता है कि आगे सब ठीक है, और दूसरा कैप्टन भी हाथ दिखाता है कि ठीक है, आपने मुझे सब संकेत करके ठीक ठाक बता दिया, धन्यवाद। लेकिन उस दिन जलदूत के कैप्टन वहां पर आने में कुछ देर कर दिए और प्रभुपाद जी वहां खड़े थे, और दूसरा शिप वहां से आकर कप्तान ने ऐसे ऐसे किया तो प्रभुपाद हाथ करने लगे, क्योंकि प्रभुपाद तो अमेरिका में जाकर प्रचार करने के लिए इतने तत्पर थे, प्रभुपाद को लगा पहला काउंसली इधर ही मिल गया शिप पे ही मिल गया जिनको हम प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी इतने आतुर थे। तो और वो व्यक्ति सोच रहा था, ये वयोवृद्ध व्यक्ति कौन है जो खड़े होकर हाथ हिला रहा है, कप्तान के जगह पर ये कौन खड़ा है। लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी के भाव को देखा, उनके मुख को देखा, नोट किया, फिर वो अपना पूरा जितना उनका सेलिंग था करके जब लौट के आए 2 साल बाद, तो न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर में प्रभुपाद जी का फोटो देखा कि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं। तो वो देखकर उनको याद आया, अरे ये तो वही वो शिप के ऊपर खड़े होकर मुझे ऐसे ऐसे किया था, लगता है यहाँ लेक्चर देकर प्रसिद्ध हो गए, चलो मिलने चलते हैं करके उनके पास गए। प्रभुपाद जी को मिले, प्रणाम किया और प्रभुपाद जी के वो शिष्य बन गए। तो प्रभुपाद जी का जो प्रचार था, ये मत सोचो कि बॉस्टन पे पहुंचने के बाद स्टार्ट हुआ, उसके पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए जितनी भी सीमित परिस्थितियों में सेवा करने का अवसर मिले, प्रभुपाद जी सेवा करने के लिए तत्पर थे। अर्थात यहां इस श्लोक में वर्णन आया है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए, 33 कोटि देवता कंस के भयावह कारागृह में प्रकट हो गए कृष्ण का दर्शन करने। अब हमें लगता है कि मंदिर अर्थात बड़ा ही प्रभावशाली, जाज्वल्यमान, सुंदर, शीतल, निर्मल एक प्रासाद हो, और ऐसे जेल इत्यादि जो कि तमोगुण के मूर्तिमान प्रतीक हैं, जघन्य हैं, बीभत्स हैं, ऐसे जेल खाने में कोई पवित्र कार्य हो सकता है क्या? जहां कृष्ण उपस्थित हो वही मंदिर है। तो माता देवकी के गर्भ में कृष्ण प्रकट हो गए, वही मंदिर हो गया, वही मंदिर हो गया, और सारे देवतागण आकर प्रणाम करने लगे और सब कहने लगे, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ये सत्यव्रत हैं, सत्यपरम हैं, काल के तीनों विभागों में वो सत्य ही रहते हैं, ऐसे सत्य के चरणों में हम आश्रय लेने के लिए आए हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण करके देवकी के इस श्लोक का वर्णन आता है, सा देवकी सर्व जगन निवास, संपूर्ण जगत उनके गर्भ में हो, भगवान श्री कृष्ण वहां थे और उनको देखने के लिए सारे देवता आकर प्रणाम कर रहे हैं। तो तब कंस भी वहां आए। कंस ने देवकी के बड़े ही ज्योतिर्मय भाव को देखकर विचार करने लगे, देवकी कभी इतनी आकर्षक नहीं लगती थी, लेकिन अचानक इनके अंग कांति में इतना तेज, इतना प्रभाव कैसे हो गया। और कंस भी समझ गए, लगता है इनके अंदर कोई दैवी शक्ति है। तो कंस के मन में क्या भाव आया, देवकी के इस रूप को देखकर मैं इसका वध नहीं करूंगा। कंस अंदर आए थे देवकी का वध करने, क्योंकि जेल खाने के लोगों ने बताया था कि देवकी अलग लग रही है, खतरनाक लग रही है, उसको मार डालो। तो कंस तलवार लेके मारने के लिए आए थे, लेकिन देवकी का दर्शन करके विचार किया, नहीं, इति घोरतमात भावात सन्निवृत्त स्वयं प्रभु। इस घोर भाव से आए थे लेकिन सन्निवृत्त, उन्होंने विचार किया नहीं आज नहीं मारेंगे। इसको सुनकर, इसको देखकर सुखदेव गोस्वामी कंस के लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सन्निवृत्त स्वयं प्रभु। सुखदेव गोस्वामी कंस को कह रहे हैं प्रभु, सम्मान पूर्वक संबोधन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के दृष्टिकोण से अगर कोई क्रूर असुर राक्षस किसी के हत्या करने का विचार करके आकर अपना हत्या करने का विचार या हत्या करने की योजना कुछ समय के लिए पोस्टपोन भी कर दे, वो पूजनीय है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड का सबसे कठिन प्रयास क्या है? हृदय परिवर्तन। हृदय को परिवर्तन करना सबसे कठिन कार्य है, और इसीलिए जो किसी का हृदय परिवर्तित कर दे वो सबसे बड़ा धुरंधर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो दूसरों को ये ज्ञान दे वो वास्तव में सबसे बड़ा दाता है। और इसलिए महाप्रभु ने कहा, भूरिदा भूरिदा, जब प्रतापरुद्र महाराज उनको गोपी गीत सुनाने लगे, क्योंकि ऐसा हृदय परिवर्तन सबसे कठिन चुनौती है। और क्योंकि कंस का हृदय कुछ परिवर्तित हो गया, वध नहीं करूंगा, अभी वध नहीं करूंगा, पुत्र का जन्म हो जाने दो उसके बाद करूंगा, केवल इतना सा संकल्प किया कि वध कुछ समय बाद करूंगा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा जो कुछ भी हो, उन्होंने अपनी योजना में परिवर्तन लाया। ही वेंट थ्रू हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ही हैज टू बी रेस्पेक्टेड। तो सोचिए, केवल वध करने की योजना को पोस्टपोन करने के लिए कोई सम्मान प्राप्त हो जाता है, तो तिलक लगाकर भगवान श्री कृष्ण का नाम हृदय में धारण करके निरंतर तो जप करता रहे, ऐसे वैष्णवगण कितने अधिक सम्माननीय होते हैं। तो इसलिए इस संकल्प को मन में विचार करके हमें चलना चाहिए। और इसीलिए श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना किए, हर व्यक्ति के सेवा को स्वीकार करके। प्रभुपाद जी ने कहा कि हम लोग एक वर्ल्ड ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी स्टार्ट करेंगे। इसको सुनकर प्रभुपाद जी के एक शिष्य हमसदूत प्रभु गए और एक पुराना टूटा फूटा बस लेके आए और प्रभुपाद जी को कहा, ये बस में हम लोग वर्ल्ड ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी करेंगे। प्रभुपाद जी बस को देखकर भ्रमित हो गए। बस में ना दरवाजा था, खिड़की सब फूटे हुए थे, ड्राइवर के सामने वाला कांच भी नहीं था और केवल एक सीट था ड्राइवर के लिए। प्रभुपाद बोले, मैं कहाँ बैठूंगा? तो भक्त लोग भागे भागे गए, एक चेयर प्रभुपाद के लिए लेके आए। प्रभुपाद ने कहा, रे इस चेयर पर बैठूंगा, बस चलेगी तो चेयर भी हिलेगा। तो ब्रह्मानंद प्रभु हट्टे कट्टे भक्त थे, चेयर को पकड़ के बैठ गए, बोले देखता हूं कैसे हिलेगा, आप निश्चिंत रहिए बैठ जाइए। तो प्रभुपाद बैठ गए, हमसदूत प्रभु ड्राइवर के सीट पे बैठ के इग्निशन ऑन किया। जैसे ही बस स्टार्ट हुआ, उसके साथ साथ सामने से डैशबोर्ड से पूरा धुआं निकलने लगा, भयंकर धुआं। उस धुएं को देखकर प्रभुपाद जी ने कहा, ओ ये तो इंडिया का बस जैसे दिखता है। वो भक्त लोग कभी इंडिया गए नहीं थे, उनको लगा प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होकर हमको शाबाशी दे रहे हैं। 3-4 साल के बाद जब वो इंडिया आए, तब देखा कि प्रभुपाद क्या कह रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा कि ये लोग क्या ऊट पटांग आके क्या क्या कर रहे हैं, सब नालायक हैं। नहीं, प्रभुपाद ने क्या देखा, इनके मन की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अर्थात चाहे उस कार्य की मात्रा कितनी ही तुच्छ क्यों न हो, अगर वो कुछ अनुकूल हो भगवान की सेवा के लिए, वो समर्पित होनी चाहिए। राधानाथ महाराज जब अमेरिका में प्रीचिंग करते थे, कुकिंग क्लास लेते थे, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट गीता के ऊपर लेक्चर देना अलाउड नहीं था, तो बोले दूसरा तरीका, कुकिंग क्लास। तो कुकिंग क्लास में एक क्रिश्चियन व्यक्ति आके बैठा और उसने अपने सामने इतना बड़ा बाइबल रखा। तो महाराज ने कहा, इतना बड़ा बाइबल क्यों रखा है सामने? उसने कहा नहीं, मैं सुनना चाहता हूं तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन इफेक्ट नहीं होना चाहता, इसलिए कवच बना के रखा है इसको। तो लेक्चर होने के बाद, कुकिंग क्लास होने के बाद वो निकलने लगा, तो महाराज ने उनको कहा भाई प्रसाद तो लेके जाओ। बोले नहीं नहीं प्रसाद वसाद हम नहीं लेंगे। एक कॉलेज के स्टूडेंट को मैं प्रसाद दे रहा था, मना करने लगा। तो मैंने कहा यार प्रसाद मना कर रहा है, गीता मना करते हुए लोग देखे, प्रसाद मना करते हुए तुम तो पहला व्यक्ति है, प्रसाद क्यों मना कर रहा है? वो कहता है नहीं नहीं मुझे डर लगता है अगर ये खाऊंगा तो मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा। तो लोगों को भय रहता है कि इसमें कुछ तो है, कुछ तो मिलाया है तुम लोगों ने। हाँ क्या मिलाया है? कृष्ण का प्रेम। तो जैसे ही उसको प्रसाद दिया, एक द्रोण हलवा बनाया था और जबरदस्त हलवा था, जैसे ही उसका आस्वादन किया वो कहता है एक और मैं खाऊंगा। तो पहले ही दिन 6 बड़े बड़े कप खा गया। फिर पूछता है अगला प्रोग्राम कब है, तो समझ गए कि इफेक्ट हो गया। अगले हफ्ते प्रोग्राम में आया, बाइबल का साइज छोटा था, उससे थोड़ा छोटा बाइबल अपने सामने रखा। फिर अगले हफ्ते आया, उससे छोटा बाइबल, और कई हफ्तों के बाद बिल्कुल पॉकेट साइज लेके आया। तो फिर महाराज ने उनको कहा अरे छोड़ो इसको, जेब में रखो, आप तो पूरा हरे कृष्णा ही हो चुके हो। तो कुछ समय के बाद प्रोग्राम में हलवा बनाने में समर्पित हो गया और फिर न्यू वृंदावन ज्वाइन हो गया। तो इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि ये व्यक्ति प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं। लेकिन यहां कंस के उदाहरण से बता रहे हैं कि कंस के अंदर भी कुछ परिवर्तन आया। तो जब ऐसा कुछ परिवर्तन आए, यही प्रचार कार्य का मूल तत्व है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, वो यही देख रहे थे कि कौन भक्ति के अनुकूल भाव को स्वीकार करके कृष्ण के साथ जुड़ने का विचार कर रहा है। ये है वास्तव में प्रचार का मूल भाव। विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीण, तबु आप नाक माने तृण होते हीन, उत्तम होया हीन करे मान अपना रे, अचिरे करीबे कृष्ण तुमार उद्धारे। रूप और सनातन वास्तव में विद्या भक्ति बुद्धि बल इत्यादि में प्रवीण थे, लेकिन फिर भी अपने आप को तृण से भी हीन मानते थे। इसलिए महाप्रभु ने कहा आप लोगों का अवश्य उद्धार होगा। दो ही भाई भक्त राजा कृष्ण कृपा पात्र, व्यवहार है राजमंत्री होय राजपात्र। व्यावहारिक रूप से राजमंत्री थे, लेकिन हृदय में निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण चलता था। तो इसलिए जन्माष्टमी का यही संदेश है, हर प्रकार के विपरीत परिस्थितियों में मन में निरंतर आशा बनी रहनी चाहिए कि कैसे हम कृष्ण को अपने हृदय में उतारें। और वसुदेव जी इस संकल्प के परिणाम स्वरूप 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण को पाए, और जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण ने संकेत किया कि मुझे उठाकर गोकुल ले चलिए। ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिका गृहात। वसुदेव जी का नाम दिया गया है यहां शौरी। शौरी अर्थात जिन्होंने शौर्य प्रदर्शन किया। अब जिस वसुदेव जी ने एक भी युद्ध नहीं जीता, जिस वसुदेव ने विवाह के दिन ही कंस के द्वारा पराजित हुए, वो शूरवीर कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए भागवत इस बात की पुष्टि करता है, शौर्य का अर्थ ये नहीं कि आपने कितने युद्ध जीते हैं या कितने लोगों को पराजित किए हैं। शौर्य का अर्थ यह है कि आप अपनी आशाओं को संकल्पबद्ध होकर निरंतर प्रयास करते चले जाते हो और हार मानने से अस्वीकार करते हो।
इसलिए जो पराजय कभी स्वीकार न करे वो है शूरवीर, ये है शौर्य प्रदर्शन। और इसलिए वसुदेव जी को शौरी शब्द कहा गया है, क्योंकि छह पुत्रों के निर्मम रूप से अपने आंखों के सामने हत्या होने पर भी वसुदेव जी ने यह नहीं सोचा कि छोड़ो, क्या भरोसा आठवां पुत्र होगा कि नहीं, क्या भरोसा कृष्ण प्रकट होंगे कि नहीं। ये बड़ा ही दर्दनाक परिस्थिति है, ये सहन नहीं कर सकते, इस बात को छोड़ देते हैं। नहीं, वो पूरी तरह लगे रहे और उनके प्रयास अंततोगत्वा सफल हुए। जब कृष्ण उनके सामने आकर उनको कहते हैं, मुझे उठाओ, गोकुल लेके चलो, हर प्रकार के निराशा भरी परिस्थिति में भी कहा, मुझे यहां से लेके चलो। हमारे एक स्टूडेंट थे कॉलेज में, बहुत प्रचारी करते रहते थे, और मैं उनको कहता था, भाई थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो, एग्जाम भी पास होना है, मेडिकल कॉलेज था। बोले, नहीं नहीं प्रचार ही सार है, बाकी सब बेकार है। मैंने कहा, वो ठीक है, लेकिन कल के दिन पेशेंट भी आएंगे तो उनका भी बेड़ा गर्क मत कर देना। तो बोले, नहीं 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 चिंता मत करो। अब एग्जाम के एक दिन पहले वो राधा गोपीनाथ मंदिर में आके भगवान के सामने हाथ जोड़ के आधा घंटा प्रार्थना कर रहे थे, तो उसको देख के मैं भयभीत हो गया। बोले, यार एग्जाम कल है, ये तो यहाँ खड़ा हुआ है। मैंने कहा, क्या प्रार्थना कर रहे हो? वो कहते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हरे कृष्ण आंदोलन का हमारे कॉलेज कैंपस में भविष्य आपके हाथ में है। बोले, यार ये क्या है? बोले, हाँ, क्योंकि मैं हरे कृष्ण का प्रतिनिधि हूँ, सब जानते हैं मैं फेल हो गया, कोई हरे कृष्ण में आएगा नहीं, इसलिए उनका यह कर्तव्य बनता है कि मुझे पास करे। पूरा नेगोशिएशन के मूड में थे। अगले दिन एग्जाम दिया, पता नहीं भगवान ने क्या योजना बनाई, पास हो गए। जिस दिन रिजल्ट आया, मैं प्रोग्राम के लिए गया, सामान्य 8-10 लोग आते थे प्रोग्राम में, मेरे लेक्चर में 8-10 लोग ही आते थे, प्रसाद में 50 आते थे, लेकिन उस दिन लेक्चर में 50 आ गए। मैं फिर रूम नंबर देखा, सही कमरे में तो आया हूं कि नहीं। मैंने कहा, इतने लोग कैसे आ गए? सब बोले, अगर ये आदमी पास हो सकता है तो कृष्ण का अस्तित्व है, नहीं तो कैसे पास हो सकता है। तो उसके बाद न केवल वो पास हुआ, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन भी हो गया। उस व्यक्ति को लेकर मैं कम से कम 4-5 उसके दूसरे साथियों को जानता हूं जो डिप्रेशन में गए। बोले, यार हम इतना प्रयास किए, इतना प्रयास किए, हम लोग का बैंड बज गया, ये तो हरे कृष्णा करते करते पास हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट भी बन गया। तो मैंने उसको कहा, भाई अभी तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में गए हो, अब कृष्ण के ऊपर इतना लोड मत डालना, खुद भी थोड़ा पढ़ाई करना। और फिर उसने अच्छी तरह से पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन में मुंबई यूनिवर्सिटी में उन्होंने गोल्ड मेडल पाया। तो इसलिए यहां पर वसुदेव जी से हम ये सीखते हैं कि अगर कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट करना हो तो वो केवल आशावादी व्यक्ति ही कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट कर सकता है। निराशावाद का कृष्ण भक्ति के स्तर पर कोई कार्य नहीं, कोई स्थान नहीं। इसलिए जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए, अब वसुदेव जी के मन में था कि अब मुझे कह रहे हैं गोकुल जाओ, गोकुल जाओ मतलब हाथ में हथकड़ी, पैर में जंजीर, दरवाजे बंद, बाहर कंस के खतरनाक सिपाही, उसके बाद यमुना, इतनी विपरीत परिस्थितियों को पार करके हम गोकुल तक कैसे जाएंगे? तो कभी कभी मन में विचार आता है, सेवा तो मिली है लेकिन मेरे सभी कमियों के बीच, इन सभी बंधनों के बीच परिस्थितियां इतनी हमें वशीभूत कर रही हैं, ये कार्य कैसे हो सकता है, असंभव है, मन कहता है। लेकिन विवेक शक्ति से उस मन को वशीभूत करके संकल्प करना है कि नहीं, इच्छा करने की शक्ति हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है। और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, इच्छा करने से और स्वप्न देखने से, संकल्प करने से मत घबराओ, ये जन्माष्टमी का संदेश है। और तब वसुदेव जी ने कहा कि बस कृष्ण ने कहा है गोकुल लेके जाओ, परिस्थितियों में तो ऐसी कोई आशा दिखती नहीं कि मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं तो यहां से निकल भी नहीं सकता, एक कदम आगे नहीं रख सकता क्योंकि पैर में जंजीर है और गोकुल कहां। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं करता नहीं, कृष्ण करता है, अपना कार्य है कृष्ण को उठाओ। प्रेम से कृष्ण को अपने हाथ में उठाए, जैसे ही कृष्ण को अपने हाथ में उठाए, पैर के जंजीर टूट गए, हाथ की बेड़ियां कट गईं, कंस का जेल खाना खुल गया, कंस के जितने सिपाही थे सब सोकर भयंकर खर्राटा मारने लगे, मूसलाधार वर्षा होने लगी। और कहा जाता है मथुरा में भले सब सो जाएं, मथुरा के कुत्ते हमेशा अलर्ट रहते हैं, भौंकते रहते हैं, किसी के पग की चाप सुनकर भौंकने लगते हैं, लेकिन बेचारे कुत्ते भी उन्होंने ऐसे सो गए जैसे स्लीपिंग टैबलेट खाया था, सारे कुत्ते भी सो गए। और इसीलिए कहा गया है कि प्रातःकालीन दिन में चाहे कितने ही कठिन चुनौतियां क्यों न हो, सुबह के समय अपने हाथ में माला उठाओ और अपने मन में कृष्ण को धारण करो, नाम लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे ही हम नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, अपने आप जो परिस्थितियां विपरीत लगेंगी वो सभी अनुकूल हो जाती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां परिवर्तित होकर अनुकूल हो जाती हैं कृष्ण की शक्ति से। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि मैं कृष्ण को मन में क्यों उठाऊं, यही सोचना है कि कृष्ण को मन में कैसे उठाऊं, कृष्ण में किस तरह मन को एकाग्रचित करूं, किस तरह कृष्ण को अपने मन के अंतःकरण में प्रविष्ट कराऊं, ये हमारे भक्ति का मूल कर्तव्य बनता है। इसलिए जैसे ही वसुदेव जी कृष्ण को उठाते हैं, कृष्ण को उठाकर अपने साथ लेके चलते हैं, यमुना जी का पट खुल जाता है, शेषनाग उनके ऊपर उनको संरक्षण देते हुए वसुदेव जी को सीधा गोकुल तक पहुंचाते हैं, और गोकुल में यशोदा माई के बगल में कृष्ण को समर्पित कर योग माया को अपने हाथ में लेकर वसुदेव जी पुनः उसी मार्ग से यमुना पार करके कंस के कारागृह में आकर उस नन्ही से योग माया देवी को वहां रख कर फिर अपनी बेड़ियां बांधकर कंस के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगते हैं। ये वसुदेव जी का हृदय का भाव, करोड़ों वर्ष तक तपस्या की वसुदेव और देवकी ने कृष्ण को अपने जीवन में पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, लेकिन कृष्ण के साथ बाल लीलाएं किसने की? नंद महाराज ने। तपस्या किसने की? वसुदेव जी ने। आनंद किसने लूटा? नंद महाराज ने। सोला माला आप करो, भगवत धाम वो जाए, कितने लोगों को यह बात स्वीकार है कि माला मैं करूं, भगवत धाम मेरा पड़ोसी जाए? तो कृष्ण का समझना बड़ा कठिन है। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी इच्छा से जो कुछ करेगा वो करेगा। तो वसुदेव जी ने एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं कहा एक दो लीला तो करके जाओ, अरे करोड़ों वर्ष तपस्या की है, सीधा निकल जाओगे, पता है क्या 6 पुत्रों के नाश से कितना ट्रॉमा हुआ, इतना स्ट्रेस बढ़ गया हम लोगों का, एकाध दो लीला करो तो फिर हम लोगों का भी तनाव कुछ कम होगा, फिर चले जाना भले। नहीं, तुरंत उनको लेके गए, वसुदेव जी कृष्ण को रख कर आए, और उसके पश्चात अगले दिन नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को वहां पाकर नंदोत्सव का आनंद लूटा। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आरुह्य विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृता। तो ये नंदोत्सव आरंभ होता है अगले दिन से, और आगे के प्रवक्ता इसके विषय में और चर्चा करेंगे। आप सभी जितने लोग यहाँ पर आज के इस कथा में उपस्थित हो, आप सभी को गोवर्धन इको विलेज में हार्दिक स्वागत। 24 तारीख को यहाँ पर भी बड़े भव्य रूप से हर वर्ष की भांति जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। लगभग 8-10 हज़ार लोग आसपास के गांव से यहाँ पर आते हैं, और हम आशा करते हैं कि इस्कॉन के जो भारत में 225 सेंटर हैं, लेकिन भारत में 7 लाख गांव है, और हर गांव में महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन पहुंचाने का आदेश किया है। पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम, तो उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम लोग यहां पर गालतारे और नाने गांव के बीच गोवर्धन इको विलेज का सुंदर प्रकल्प परम पूज्य राधानाथ महाराज की प्रेरणा से स्थापित किया गया है। और कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ पर आकर रहने में बहुत कठिनाई होती है, यहाँ का रेट बहुत ज़्यादा है, ऐसा है वैसा है वगैरह। तो महाराज की बड़ी इच्छा थी कि एक इस तरह का भवन बने जहाँ पर लोग आकर आराम से रह सकें बिना किसी अधिक आर्थिक चिंता के। तो अभी उस संदर्भ में एक सुंदर भवन बनाया है। और दूसरा, महाराज की इच्छा थी कि आसपास के गांव के जितने लोग यहाँ आते हैं उन सभी गांव के लोगों के लिए निःशुल्क प्रसाद वितरण प्रतिदिन यहाँ पर हो। तो ये दोनों कार्यों को लेकर यहाँ पर कुछ लोगों ने हमारी बहुत सहायता की, उनके विषय में अभी अनंत राघव प्रभु कुछ सूचना देंगे और इनका हम अभिवादन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग प्रभु। श्रीमान गौरांग प्रभु के लिए जोर से बोलेंगे हरि बोल। तो मैं अनीता माता जी और हेमंत जलान प्रभु, इनको अनुरोध करूंगा वो प्रभु जी के यहाँ पर व्यासासन के पास आए। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, सब भक्त लोग के लिए जो ये सुविधा हमने की है पायल भवन, तो ये पायल भवन बन रहा है, लगभग 15 रूम्स है और वहाँ पर डॉर्मेटरी की व्यवस्था की गई है। तो अभी हम उनको यहाँ पर इनवाइट करेंगे, तो बहुत ही जल्द वो पायल भवन बन जाएगा। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज की बहुत तीव्र इच्छा है और बहुत सुंदर वहाँ पर रूम हमने तैयार किए हैं, भक्त लोग वहाँ पर आ सकते हैं। तो अनीता माता जी और हेमंत जलान प्रभु के लिए जोर से बोलेंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो गोवर्धन इको विलेज की तरफ से हम बहुत अपना कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और इनका धन्यवाद करेंगे। और श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी, श्री श्री राधा मदन मोहन के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उनके भक्तिमय जीवन में और प्रगति हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं कहना है। हम लोगों का सौभाग्य है कि इस काम में हम लोग ने कुछ सहयोग किया, और मैं समझता हूँ पायल भवन बहुत जल्दी ही कार्यरत हो जाएगा, और उसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी वहीं पर जा कर के देखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद जलन फैमिली। और जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, गांव-गांव के लोगों के लिए यहाँ पर गोवर्धन अन्न क्षेत्र जो हमने शुरू किया है, अगर आपको मालूम नहीं होगा, प्रतिदिन लगभग 400 से 500 लोग मुफ्त में लंच प्रसाद लेके जा रहे हैं। बोलिए हरि बोल। तो इस गोवर्धन अन्न क्षेत्र को सपोर्ट करने वाले हमारे साथ यहाँ पर आए हैं लुखी फैमिली, जो लगभग 22 लोग आए हैं। तो हम शैलेश जी और उनके वाइफ यहाँ पे हैं। शैलेश जी शैलेश जी और उनकी मिसेस प्लीज आइए यहाँ पर, और नंदेश जी और उनके मिसेस, हम दो कपल इनको यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। बोलिए हरि बोल। शैलेश जी आपकी, तो शैलेश जी और नंदेश लुखी जी, इनके परिवार ने गोवर्धन अन्न क्षेत्र को पिछले कुछ महीनों से सपोर्ट किया है, और इनके साथ लगभग 22 लोग आए हैं, वो लोग भी यहाँ पर है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बोलिए हरि बोल हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद लुकी फैमिली, वी आर वेरी ग्रेटफुल, बहुत आपका कृतज्ञता हम व्यक्त करेंगे, और आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री राधा वृंदावन बिहारी श्री श्री मदन मोहन, कि आपके कृष्ण भावनामृत और में और प्रगति हो। हरे कृष्ण।
हरि बोल। हमारा सौभाग्य है कि हमें कुछ योगदान देने का अवसर मिला। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू,
बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक परम पूज्य राधानाथ महाराज की बहुत तीव्र इच्छा थी, जैसे यहाँ पर अलग अलग जगह से जो डिवोटीज आते हैं, यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, साथ ही साथ प्रभुपाद जी के शिष्य और सीनियर ब्रह्मचारीज यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे डिवोटीज यहाँ पर आके ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, तो उसी के आधार पर परम पूज्य राधानंद महाराज की इच्छा थी कि हम एक भजन आश्रम तैयार करें। तो ये भजन आश्रम को तैयार करने के लिए माता जी है वृषभानु नंदिनी माता जी, जो पुणे से हैं, उन माता जी ने बहुत सहयोग किया है, तो माता जी को भी विनंती करते हैं आप कृपा करके आगे आ सकते हैं। तो लगभग 10 रूम बनने वाले हैं, और उसमें प्रभुपाद जी के वरिष्ठ जो डिसाइपल्स और विशेष करके जो सीनियर ब्रह्मचारी वहां पर रहेंगे, तो पुनः एक बार माता जी के लिए जोर से बोलेंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली से और श्रीदामा प्रभु के कुछ काउंसिली बॉम्बे से आए हैं, तो उनके लिए भी जोर से हरि बोल बोलेंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौड़ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।